हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मुंबई, जुहू। शाम का समय था। आसमान में काले बादल घिराए थे। हर तरफ घना अंधकार अपना अस्तित्व कायम करता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो अंधकार किसी की जिंदगी के सुनहरे प्रकाश को धीरे धीरे खुद में समेट रहा था, उसकी जिंदगी को घने अंधकार में धकेल रहा था। शाम का वक्त था, इसलिए जुहू की ओर काफी भीड़ थी। मौसम भी खराब हो रहा था, इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गए थे, जिस वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग चुकी थी और गाड़ियों की उसी भीड़ में एक टैक्सी फंसी हुई थी, जिसमें बैठी लड़की बार बार अपनी कलाई में बंधी उस पुरानी सी घड़ी को देख रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, उस लड़की की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। उसने अपने एक हाथ में अपने फोन को जकड़ा हुआ था, जिस पर एक मैसेज शो हो रहा था। शायद कहीं का एड्रेस था और उसे जल्दी से जल्दी वहीं पहुंचना था। डर और घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, कोहनी पर छिलने के निशान थे जिससे हल्का हल्का खून रिस रहा था। मतलब जख्म ताज़ा था, शायद जल्दबाजी में कहीं गिर गई थी। नीले रंग का सिंपल सा शॉर्ट कुर्ता, जिसका रंग भी कुछ फीका पड़ चुका था, उसके नीचे वाइट जीन्स जो गंदी हो चुकी थी, और गले में मल्टी कलर का स्कार्फ जिससे वो बार बार अपने पसीने को पोंछ रही थी, चौड़ा माथा जिस पर कुछ छोटे छोटे बालों के लटें बेतरतीब ढंग से फैली हुई थीं, पतली आईब्रो जैसे अभी ही बनवाई गई हों, बड़ी बड़ी भूरी आँखें जो काजल से सजी थीं और बेहद आकर्षक लग रही थीं, पतली छोटी सी नाक और पतले पतले करीने से तराशे गए गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल गुलाबी होंठ जो घबराहट की वजह से सूख चुके थे, गोरा मुखड़ा जिसका रंग डर से सफ़ेद पड़ता जा रहा था, चांद सा सुंदर मुखड़ा वो किसी को भी अपना दीवाना बना दे, करीने से तराशा गया बदन कुदरत का बनाया बेशकीमती रत्न लग रही थी वो लड़की, जो सादगी में भी कहर बरपा रही थी। उसकी सुनहरी आँखें ही किसी को भी खुद में डूबने पर मजबूर करने को काफ़ी थीं। उसके गुलाबी लब और उनके ऊपर दाईं ओर अपनी हुकूमत जमाए बैठा वो काला तिल जो किसी के भी ध्यान को अपनी ओर खींचने का हुनर जानता था। उसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां करना बेहद कठिन था, और उस खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा था उसके लबों पर अपना अधिकार जमाए बैठा वो तिल और उसके चेहरे पर झलकती मासूमियत। वो लड़की कुछ पल घबराई हुई सी, कभी अपने फ़ोन को तो कभी अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रही थी, पर जब ट्रैफिक ने छटने का नाम नहीं लिया तो उसने अपने गोद में रखे बैग से पैसे निकालकर उस टैक्सी वाले को दिए और टैक्सी से निकलकर पैदल ही जुहू बीच की ओर दौड़ गई। वो अभी कुछ दूर पहुंची ही थी कि बादल पूरे जोर के साथ गरजे, जिससे एक पल को वो लड़की घबरा गई और उसके कदम कांप उठे, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाला और उस तूफानी बारिश की परवाह न करते हुए बस सड़कों पर भागती रही। कुछ 15 मिनट पूरा दम लगाकर भागने के बाद एक विला के बाहर आकर उसके कदम रुके। दरवाज़ा बंद था तो वो वहीं खड़ी हो गई। भागने की वजह से उसकी सांसें फूलने लगी थीं, इसलिए उसने अपनी दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर टिकाया और हल्का झुकते हुए गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वो पूरी तरह से बारिश में भीग चुकी थी। कुछ सेकंड बाद जब उसकी सांसें कुछ नियंत्रित हुईं तो उसने सर उठाकर देखा, पर अब वो दरवाज़ा बंद नहीं था बल्कि खुल चुका था, और उस बड़े से काले गेट के दोनों तरफ दो गार्ड अपनी ब्लैक यूनिफॉर्म पहने सर झुकाए खड़े थे। उस लड़की को कुछ समझ नहीं आया। इतने में एक सर्वेंट बाहर आया और उस लड़की के पास आकर बोला, मैडम, आपको सर ने अंदर बुलाया है। वो सर्वेंट उसके आगे सर झुकाकर खड़ा हो गया। वो लड़की उलझी हुई सी आगे बढ़ गई और उस सर्वेंट के पीछे पीछे चलने लगी। वो घबराई निगाहों से उस बंगले को देख रही थी। वाइट संगमरमर से बना वो बंगला बहुत प्यारा लग रहा था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। वो गलियारों से होते हुए अंदर बंगले की ओर बढ़ रही थी। उसके दोनों ओर खुला गार्डन था। दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली थी। बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे थे वहाँ। वातावरण जितना शांत था उतना ही भयावह भी लग रहा था। बारिश अब भी अपने चरम पर थी और पेड़ पौधे ऐसे लग रहे थे जैसे नहाकर एकदम ताज़ा हो गए थे। वो लड़की घबराई हुई सी उस सर्वेंट के पीछे चली जा रही थी और वो खुद में सिमटती जा रही थी, क्योंकि एक तो बारिश में भीगने की वजह से उसके कपड़े उसके जिस्म से चिपक गए थे और दूसरी वजह थी कि पूरी तरह भीगने की वजह से अब उसे ठंड लग रही थी। उसने जैसे ही गेट के अंदर कदम रखा उसके कदम ठिठक गए और आँखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। वहाँ हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। इतना घना अंधकार था कि एक हाथ को दूसरे हाथ तक भी न दिखे। वो लड़की जिसके पीछे आ रही थी, अब वो सर्वेंट उसे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए वो एंट्रेंस पर ही फड़ी हो गई और घबराई हुई सी सामने फैले घने अंधेरे और अजीब से सन्नाटे को देख रही थी। अचानक ही उसके कानों में एक सख्त रौबदार आवाज़ पड़ी, अंदर आ सकती हो, सही जगह आई हो, पहले ही तुम आधे घंटे लेट हो, अगर अब एक मिनट भी और देर की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। एकदम से उस दिल दहला देने वाली आवाज़ को सुनकर वो लड़की एकदम से कांप उठी। पहले तो वो डर गई, पर फिर जैसे ही उसने उसके बात पर ध्यान दिया उसे कुछ याद आया। फिर उसने अपने दिल को मजबूत किया, फिर उसने अपनी हथेली को आगे करते हुए अंधेरे में ही कदम आगे बढ़ा दिया। वो अभी कुछ कदम चली ही थी कि उसके हाथ किसी के शरीर को छू गए, तो उसने हड़बड़ाहट में अपनी हथेलियों को पीछे हटाते हुए कहा, सॉरी। वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही किसी ने उसकी पीछे हटती बांह को थामकर उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया। उस लड़की का सर सामने खड़े इंसान के चौड़े सीने से टकरा गया। वो पाषाण जैसा सीना उससे टकरा कर लड़की का सर एक पल को चक्कर आ गया। अगले ही पल उसने कानों में एक बार फिर वही गुस्से भरी भयावह आवाज पड़ी, वेलकम टू हेल मिस धृति अवस्थी। लड़की मतलब धृति के कानों में उसके कहे शब्द पड़े तो एक अनजान के मुंह से अपना नाम सुनकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। बाकी बातों पर उसने गौर ही नहीं किया। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर उसने चौंक कर सर उठाकर देखा, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। बस उस अंधेरे में टिमटिमाती किसी की काली गहरी डरावनी आंखें जो उसी पर टिकी थीं। उसे देखकर धृति का गला सूखने लगा। तभी उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत अपनी हथेलियों से उस लड़के को खुद से दूर धक्का देते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहा, मुझे ऐसे यहाँ बुलाने का क्या मतलब हुआ? वो ठीक से उससे दूर भी नहीं जा सकी थी कि एक बार फिर उसकी बांह उस लड़की की पकड़ में आ चुकी थी और इस बार उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि धृति के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। वो दर्द से छटपटाते हुए अपनी बांह को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर उस लड़के ने एक बार फिर उसकी बांह पकड़कर उससे सटा लिया और उसकी बांह को बड़ी ही बेरहमी से मोड़ते हुए उसकी पीठ से सटा दिया। धृति दर्द से तड़प उठी। उसने दर्द से तिलमिलाती हुई निगाहें उठाकर उस शख्स को देखा जिसके वो सिर्फ आंखें ही देख पा रही थी। धृति की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। दर्द चेहरे पर उभर आया था, पर उस लड़के के भाव एकदम सख्त थे और आंखों में नफरत की ज्वाला धधक रही थी। धृति ने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपने लबों को खोलना चाहा, उसके दोनों गालों को पकड़ते हुए उस शख्स ने उसके मुंह को दबा दिया, जिससे वो कुछ कह न सकी, बस भरी निगाहों से उस भयानक डरावनी काली आंखों को देखने लगी। उस लड़के ने उसकी एक बांह को पकड़कर उसकी पीठ से लगाकर उसे खुद से एकदम सटाया हुआ था। दोनों के जिस्म एक दूसरे को छू रहे थे। दूसरी हथेली से उसने उसके मुंह को दबाया हुआ था, जिससे वो चाह कर भी वो कुछ कह नहीं सकती थी।
धृति आंसुओं से लबालब भरी आंखों से उसकी गहरी काली डरावनी आंखों में झांक रही थी। वो लड़का कुछ पल बेहद गुस्से से उसे घूरता रहा, फिर उसने गुस्से से जबड़े भींचते हुए कहा, यहाँ किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि अर्णव सिंह रायजादा के सामने निगाहें उठाकर भी देख ले। ऊंची आवाज में बात करना तो बहुत दूर की बात है, और तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं कि मेरे सामने खड़ी रह सको, और तुम हो कि मुझ पर अपना रौब दिखा रही हो। जानती नहीं हो अभी मुझे? कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अगर तुम्हारी जगह किसी और ने ये गुनाह किया होता तो अभी तक अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा होता, पर तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं मिल सकती। तुम्हें मौत जरूर मिलेगी, पर उसके लिए तुम्हें पल पल तलपना होगा, मुझसे मौत की भीख मांगनी होगी, महसूस करना होगा कि हर पल एक नई मौत मरने का दर्द कैसा होता है। तुम्हें तो ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी, पर उससे पहले तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम तड़पोगी मरने के लिए, पर तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि मेरी इजाज़त के बिना तुम्हें मरने की भी इजाज़त नहीं मिलेगी। ना तो तुम्हें सुकून से जीने दूंगा और ना ही चैन से मरने। बहुत शौक है ना दूसरों की ज़िंदगी उनकी फीलिंग्स के साथ खेलने का? अब बस देखती जाओ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का क्या हश्र करता हूँ, मिस धृति अवस्थी। उस शख्स ने एक एक शब्द बेहद गुस्से में चबाते हुए कहा। धृति पहले तो उसके गुस्से भरी डरावनी आवाज़ को सुनकर सहम गई, पर जैसे जैसे वो कहता गया धृति के चेहरे के भाव बदलते गए। अर्णव की घूरती निगाहें अब भी उस पर ही टिकी थीं, जिसे धृति बखूबी महसूस कर पा रही थी। अर्णव ने उसे बेहद टाइटली पकड़ा हुआ था, न वो हिल पा रही थी और न ही कुछ कह पा रही थी। उसने अपने दूसरे हाथ से उसके हाथ को अपने मुंह पर से हटाया, फिर उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, है कौन आप? चाहते क्या है मुझसे? कैसे जानते हैं मुझे? मैं तो आपको नहीं जानती। वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही अर्णव ने उसे झटके से खुद से दूर धकेल दिया और गुस्से से चीख उठा, तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें और तुम्हारी फितरत को बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे बारे में कुछ जानो, फिर भी तुम्हें इतना बता देता हूँ कि मैं दुश्मन हूँ तुम्हारा। तुमसे बेइंतहा नफ़रत करता हूँ और इस नफ़रत की आग में तुम्हें पल पल जलने पर मजबूर करने वाला हूँ। मैं वो तूफ़ान हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह करने आया है। उसकी बातें बेचारी धृति के सर के ऊपर से जा रही थीं। उसके यूं अचानक धकेलने की वजह से धृति ज़मीन पर गिर गई थी और अब वो सर उठाकर सहमी सी, हैरान परेशान सी उस लड़के को देख रही थी। लड़का जैसे ही चुप हुआ, धृति ने खड़े होते हुए थोड़ा आराम से कहा, देखिए मैं आपको नहीं जानती, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता आप क्या और क्यों कर रहे हैं, नहीं जानती कि क्यों आप इस कदर मुझसे नफ़रत करते हैं, जबकि मैंने पहले कभी ना आपको देखा है और ना ही आपका पहले कभी नाम ही सुना है। मुझे बस इतना पता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा और ना ही मेरे परिवार की आपसे कोई दुश्मनी है। आपने मुझे यहाँ बुलाया तो मैं आ गई, अब मेरे परिवार और मुझे बख्श दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। धृति उससे विनती कर रही थी, पर अर्णव पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। धृति बोल ही रही थी कि अचानक एक भयानक हंसी की आवाज़ वहां गूंज गई, जिससे धृति एकदम से खामोश हो गई और हैरान परेशान सी अपने सामने खड़े अर्णव को देखने लगी, जो उसे देखकर ऐसे हंस रहा था मानो उसका उपहास उड़ा रहा हो। अर्णव कुछ देर तक हंसता रहा, फिर एकाएक उसने धृति की बाँह पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। वो उसे बेहद डरावना लग रहा था और उसकी गुस्से भरी निगाह धृति पर टिकी हुई थी। उसने धृति की बाँह पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए दांत पीसते हुए कहा, गलत कर रहा हूँ मैं? जो तुमने किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं, मिस धृति अवस्थी। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने का। आज जब बात तुम्हारे अपनों की आई तो इतनी जल्दी तिलमिला उठी। धृति अब भी परेशान सी उसे देख रही थी और उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। बाँह में दर्द हो रहा था उसे, पर अभी उसे इसका होश ही नहीं था। वो तो अर्णव के लगाए इल्ज़ाम सुनकर स्तब्ध सी उसे देखे जा रही थी। अर्णव ने अब शैतानी स्माइल के साथ उसे देखा, फिर उसकी बाँह को उसकी पीठ से लगाकर उसे अपने और करीब करते हुए ईविल मुस्कान के साथ बोला, सही कहा तुमने, मेरा तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मेरी दुश्मनी तो तुमसे है और वो बेचारे तो तुम्हारे और मेरे बीच पिस रहे हैं। आखिर थोड़ी सज़ा तो उन्हें भी मिलनी चाहिए ना, तुम जैसी बेटी को पैदा करने की। पर तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने आया हूँ और वो बस मेरे मोहरे हैं जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाने में मेरे काम आने वाले हैं। जानना नहीं चाहोगी कि मेरा उन्हें किडनैप करने और यहाँ बुलाने के पीछे आखिर मेरा मकसद क्या था? ध्रुति उसके एक्सप्रेशन देखकर घबराने लगी, उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। अर्णव की आंखों में उसने अपने लिए नफरत देखी थी, बेइंतहा नफरत जिसकी वजह तक वो नहीं जानती थी, पर अर्णव की बातें उसके दिल दहलाने को काफी थीं। उसने घबराते हुए धीरे से पूछा, क्या चाहते हैं आप मुझसे? शादी करना चाहता हूँ तुमसे अर्णव ने बिना किसी भाव के ही जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर धृति के होश भागता हो गए। वो फटी आंखों से उसे देखते हुए हैरानगी से बोली, शादी? हाँ शादी, और ये सोचने की भूल भूल से भी मत करना कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसलिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तिल तिल करते मरते देखना चाहता हूँ, तुम्हें मौत के लिए तड़पते देखना चाहता हूँ। बहुत खेल ली तुम औरों की जिंदगी से, पर तमाशा तुम्हारी जिंदगी का बनेगा। तुमसे शादी करके मैं तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी खुशियों को तबाह कर दूंगा। इतना दर्द दूंगा तुम्हें कि तुम्हारे आंसू तक तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। तुम्हें इतना अकेला कर दूंगा कि तड़पोगी तुम दर्द से, मरना चाहोगी, पर मैं तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होने दूंगा। धृति, जो अब तक शादी की बात सुनकर सदमे में थी, वो एकाएक जैसे होश में लौट आई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अर्णव को खुद से दूर धकेल दिया। अर्णव को इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो दो कदम पीछे हट गया। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा, पर वो कुछ कहता या कर पाता उससे पहले ही धृति उस पर गुस्से से चीख पड़ी, समझ क्या रखा है आपने खुद को? मैं तब से कुछ कह नहीं रही, शांति से पेश आ रही हूँ तो मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। तब से सुन रही हूँ जो मुँह में आ रहा है, बस बोले जा रहे हैं, अपना जोर आजमा रहे हैं मुझ पर, ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिसकी वजह तक मुझे नहीं पता। तब से मैं खामोश थी तो आपने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ही समझ लिया, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। आप कौन हैं, क्या हैं, क्यों यहाँ आए हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब, किस बात का बदला लेना चाहते हैं मुझसे, मैं कुछ नहीं जानती और ना ही मेरी आपकी बकवास बातों के पीछे की वजह को जानने में कोई दिलचस्पी है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे परिवार को अपना मोहरा बनाकर आप ठीक नहीं कर रहे। मैं आपको शांति से कह रही हूँ कि उन्हें छोड़ दीजिए, वरना। वरना क्या? एकाएक अर्णव ने आकर उसकी बांह पकड़कर उसे मोड़कर उसकी पीठ से लगाते हुए उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे धृति चौंक कर उसे देखने लगी। अर्णव जबड़े भींचे अपनी आग धधकती आंखों से उसे घूर रहा था। कुछ पल बाद धृति को होश आया कि वो उसके कितने करीब है, तो उसने उससे दूर होने के लिए छटपटाते हुए कहा, अगर आपने अभी मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया और मेरे परिवार को अपनी कैद से आज़ाद नहीं किया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। उसकी बात सुनकर अर्णव शैतानी हंसी हंसने लगा। धृति असमंजस भरी निगाहों से उसे देखने लगी। एक बार फिर अर्णव की शैतानी हंसी उसे डरा रही थी।
कुछ पल हंसने के बाद अर्णव ने उसके गाल पर अपनी दूसरी हथेली की उंगलियों को बेतरतीब ढंग से घुमाते हुए एवल मुस्कान के साथ कहा, पुलिस को बताओगी तुम? और क्या करेगी पुलिस? आकर मुझे पकड़ेगी और तुम्हारी फैमिली को आज़ाद करवा देगी मुझसे? बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रही हो तुम। पुलिस क्या, तुम कमिश्नर के पास भी चली जाओगी तब भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अर्णव सिंह रायजादा नाम सुनते ही सब अपने कदम पीछे हटा लेंगे और तुम एकदम अकेली रह जाओगी, बेबस हो जाओगी, क्योंकि तब न तुम खुद को मुझसे बचा पाओगी और न ही तुम्हारा परिवार को मेरी कैद से रिहाई मिलेगी। बेचारे तुम बेवकूफ़ी की वजह से बेमौत मारे जाएंगे। उसके बाद सुनकर ध्रुति का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। अर्णव का रुतबा वो बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। उसके इरादों को जानने के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी कि चाहे जो हो जाए वो अपने मकसद को पूरा करके रहेगा। अपने परिवार को दांव पर लगा देख धृति की हिम्मत कमज़ोर पड़ने लगी थी। कितनी ही कोशिशें करने के बाद भी वो उसकी पकड़ से आज़ाद नहीं हो पा रही थी। अर्णव चेहरे पर सख्त भाव लिए उसे घूर रहा था। धृति अब उसके आगे हारती जा रही थी। अर्णव ने अब भी उसकी बाँह को बेरहमी से मरोड़ा हुआ था और दर्द से धृति की आंखों में आंसू भर आए थे। वो थक गई थी उससे छूटने की कोशिश करते करते। अपने परिवार की जान को खतरे में देख उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसने अब रुआंसी होकर उससे सवाल किया, क्यों कर रहे हैं आप ये? ऐसा क्या किया है मैंने जो आप मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? जब इतनी ही नफरत है मुझसे तो मुझे मार दीजिए ना, क्यों मुझसे शादी करके अपनी जिंदगी और अपने घर में मुझे जबरदस्ती घुसाना चाहते हैं? उसकी नम आंखें देखकर अर्णव के दिल को सुकून मिलने लगा था, पर आंखें अब भी ज्वालामुखी सी धधक रही थीं। उसने जलती आंखों से उसे घूरते हुए कहा, नहीं जानती तुमने क्या किया है, इतनी भोली नहीं हो तुम जितना बनने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हारे असली चेहरे से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ, इसलिए अपना ये बिचारी होने का नाटक तुम्हें मेरे सामने करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अर्णव सिंह रायजादा आग का दहकता गोला है जिसने तुम्हें ये झूठे आंसू कभी ठंडा नहीं कर सकते। तुम मरना चाहती हो ना ताकि अपने गुनाहों से तुम्हें छुटकारा मिल जाए, पर तुम्हारे गुनाहों की सज़ा इतनी छोटी नहीं हो सकती, इतनी आसान मौत नहीं मिल सकती तुम्हें। जैसे तुम्हारी वजह से आज मैं पल पल तड़प रहा हूँ, वैसे ही तुम भी तड़पोगी। तुमसे शादी करने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, तुम्हारी बर्बादी। मैं वो तूफान हूँ जिसने तुम्हारी जिंदगी में दस्तक ही तुम्हें तबाह करने के लिए ली है। दूसरों की जिंदगी के साथ बहुत खेल ली तुम, अब बारी मेरी है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसी की जिंदगी उसकी फीलिंग्स के साथ खेलने का क्या अंजाम होता है। शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी और उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी का जहन्नुम से भी बदतर बना दूंगा। मैं नहीं करूंगी आपसे शादी जब तक आप मुझे ये नहीं बता देते कि क्यों आप ये सब कर रहे हैं। मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। ध्रुति ने दृढ़ता से अपना फैसला सुना दिया, जिसे सुनकर अर्णव ने उसे आज़ाद कर दिया और कदम पीछे हटाते हुए बेफिक्री से मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मत मानो मेरी बात, नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें कुछ भी। मत करो मुझसे शादी, पर इतना ध्यान रहे कि यहाँ तुम्हारे कदम इस घर से बाहर पड़ी और वहाँ तुम्हारा परिवार इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। धृति, जो उससे आज़ाद होते ही वहाँ से भागने की फिराक में थी, उसके कदम ठिठक गए उसकी बात सुनकर। एक पल को वो भूल ही गई थी कि उसका परिवार अब भी इस राक्षस के कब्जे में है और ये उनके साथ कुछ भी कर सकता है। अर्णव ने उसे रुकते देखा तो उसके लबों पर तिरछी मुस्कान फैल गई। उसने सख्त लहजे में आगे कहा, दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, ये जानते हुए कि इस शादी से तुम्हें सिर्फ दर्द, अपमान, धोखा मिलेगा। मुझसे शादी करके अपने परिवार को मेरी कैद से आज़ाद करवा लो, या फिर मेरी बात को न मानते हुए यहाँ से चली जाओ, पर फिर अपने परिवार की लाश देखने के लिए भी तैयार रहना। या तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकती हो, जिसका मतलब होगा कि तुम अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी, या फिर अपने परिवार को एक नई जिंदगी देने के एवज में खुद को मौत से बदतर जिंदगी जीने के लिए तैयार कर लो। फैसला तुम्हारा है और तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 5 मिनट हैं। अगर इन 5 मिनट के अंदर तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कही और यहाँ से जाने के लिए कदम आगे बढ़ाया, तो मेरा बस एक फ़ोन कॉल और तुम्हारे परिवार का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। उसके बाद तुम दुनिया में कहीं भी क्यों न छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद वो तुम्हारा हश्र होगा, तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। अर्णव के चेहरे पर गुस्से के साथ नफ़रत के भाव भी उभर आए थे और अब वो अपने फ़ोन को अपने हाथों में घुमाते हुए धृति को घूर रहा था। वहीं धृति के तो पैर जैसे वहां जम से गए थे। कानों में अर्णव की कही बातें गूंज रही थीं और आंखों के आगे अपने परिवार का चेहरा घूम रहा था।